ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की अपनी सफल यात्रा के बाद स्वदेश पहुंच गए हैं। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य तथा औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए हैं, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तीसरे और अंतिम चरण में कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों के कुल 40 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 1 अक्टूबर को होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने और राजनीतिक रैलियों को संबोधित करने के लिए आज से जम्मू के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 प्रचारकों की घोषणा कर दी है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज से बिहार का 2 दिन का दौरा करेंगे। वे आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पटना में भारतीय जनता पार्टी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। श्री नड्डा बाद में एक नई सुविधा का उद्घाटन करने के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शुरुआती अनुमान के अनुसार आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 1,08,000 हेक्टेयर भूमि पर फसल को नुकसान हुआ है। इससे लगभग 2,00,000 किसान प्रभावित हुए हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री चौहान आज बाढ़ प्रभावित खम्मम जिले सहित तेलंगाना के कई अन्य क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश तथा बाढ़ को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करें। मंत्रालय ने कहा है कि बीमा कंपनियों को विशेष शिविर आयोजित करके दावों का निपटारा करना चाहिए। मंत्रालय ने बीमा दावों के निपटान के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने का भी निर्देश दिया है। सरकार ने आमदनी और योग्यता पर आधारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की 60 किलोग्राम प्रतियोगिता में ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। 8वें दिन की स्पर्धाओं के अंत में भारत 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 16वें स्थान पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।